न जायते म्रियते वा विपश्चिन् नायं कुतश्चिन् न बभूव कश्चित् अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आचार्ययम् आत्मतत्व की वास्तविकता का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं, आत्मा का न जन्म है न मृत्यु, न वह कहीं से पैदा हुआ न होगा, वो अज हैं, नित्य हैं, शाश्वत हैं, पुराण हैं, न वो मारा जाने वाला है न वो मरने वाला है। विपश्चित, इस प्रकार साधक अपनी साधना के द्वारा उसको जानकर आत्मा के साथ एक रूप हो जाता है। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, ये श्लोक का जो आधा भाग है, अंतिम दो पाद ये निष्कर्षात्मक हैं। न जायते इति अजः, न म्रियते इति नित्यः, वो पैदा होता नहीं है इसलिए अज है, और मरता नहीं है इसलिए नित्य है, वो शाश्वत पुराण है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीरे हन्यमाने न हन्यते, शरीर के पैदा होने या मरने से, मारे जाने से आत्मतत्व न मरने वाला बनता है और न मारा जाने वाला बनता है। ये सारी चीजें शरीर की हैं, शरीर के मरने से आत्मतत्व नहीं मरता है, शरीर का मरना आत्मतत्व का मरना नहीं है, शरीर का पैदा होना आत्मतत्व का पैदा होना नहीं है। आप इसको ऐसा समझ ले जैसे विद्युत है, विद्युत धारा अखंड एक रस प्रवाहित होती रहती है तार में, लेकिन वहीं आपने बल्ब लगा दिया और वो विद्युत की धारा बल्ब में आ गई प्रकाश के रूप में, मालूम पड़ने लगती, फिर उसमें क्रियाकारिता आ जाती है, बहुत सारा काम फिर वो लाइट करती हैं, लेकिन वो लाइट फूट जाए तो आप विद्युत का फूटना नहीं मानते हैं, विद्युत तो अंदर है उसके अंदर, लेकिन केवल उसका जो बल्ब है वो कांच का गोला फूट गया है या अंदर का जो फ्यूज होता है ना वो टूट गया है, बहुत बारीक बारीक तार होते हैं उसके अंदर, वो जब टूट जाते हैं तो लाइट आपको प्रकाश नहीं दे सकती। तो ऐसे आत्म तत्व व्यापक, सबके भीतर, शरीर के मारे जाने पर भी उसमें किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भगवान शंकराचार्य जी ने यहां आकाश का दृष्टांत दिया, यत एवं अतो न हन्यते न हिंसते हन्यमाने शस्त्रादिभिः शरीरे तस्थो अपि आकाशवदेव। शांकर भाष्य 18वें श्लोक के अंतिम शांकर भाष्य में, यत एवं अतो न हन्यते न हिंसते हन्यमाने शस्त्रादिभिः शरीरे तस्थो अपि आकाशवदेव। शास्त्रों ने आत्मा को दिखाने के लिए, बताने के लिए आकाश का उदाहरण दिया है। और आकाश के उदाहरण को छोड़कर अन्य उदाहरण आपको आत्म तत्व को समझने के लिए मिलता नहीं है। हमारे पास जितना महत्वपूर्ण आकाश तत्व है, एक आप क्रम देखें, तस्मात् वा एतस्मात् आत्मनः आकाशः सम्भूतः, आकाशात् वायुः, सबसे पहले आत्मा से, परमात्मा से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु उत्पन्न हुई, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी। ये श्रुति क्रम बता देती है। बहुत एक आश्चर्य की बात, ये जो पांच भूत आपके सामने हैं, इन पांचों भूतों में उत्तरोत्तर जो आगे आगे का जो भूत हैं, वो ज्यादा गुणवान, ज्यादा क्रियावान और ज्यादा परिवर्तनशील हैं, और वो ज्यादा स्थूल भी हैं। आप छह तत्व आप अपने सामने रखना, एक परमात्मा, दूसरा आकाश, तीसरा वायु, आप उस क्रम से आप देखना। सर्वप्रथम परमात्मा तत्व, द्वितीय स्तर पर आकाश तत्व, तीसरा वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व। सबसे अंतिम जो तत्व है वो पृथ्वी तत्व, और उसके बाद फिर पृथ्वी से बहुत सारी चीजें पैदा हो जाती हैं। उसी शरीर से पैदा हुआ ये शरीर है, उसी पृथ्वी तत्व से पैदा हुआ ये पेड़ पौधे आदि जगत हैं। तो ये जो उत्तरोत्तर जो कार्य हैं, वो ज्यादा स्थूल, ज्यादा ऐन्द्रिक, ज्यादा परिवर्तनशील मालूम पड़ता है, और उसका पहले पहले पूर्व पूर्व का जो कारण है वो उससे ज्यादा सूक्ष्म, उससे ज्यादा गुणवान, उससे ज्यादा कम ऐन्द्रिक। आप क्रम से देखना, परमात्मा तत्व तो मालूम नहीं पड़ता है, थोड़ा बहुत आकाश तत्व मालूम पड़ता है। आकाश माने खाली जगह, आकाश का अर्थ होता है अवकाश, जो आपको खाली स्पेस दिखाई देता है। आपको मालूम तो पड़ता है कि भैया यहां है, ये बैठो, ये खाली जगह है, यहां बैठो। और आकाश से वायु उत्पन्न हो गई, अब आकाश से वायु थोड़ी स्थूल हो गई, आकाश किसी भी इंद्रिय के द्वारा गम्य नहीं है, लेकिन वायु आपको त्वचेंद्रिय के द्वारा गम्य है। जब हवा लगती है तो अपने को मालूम पड़ता है, हवा जो है आपके लिए प्रतिबंध बन जाती है, बहुत ज्यादा हवा आपके सामने से आ रही हो तो आपको प्रतिबंधित कर देती है, आगे बढ़ने में रोक लेती है, आपकी गति को अवरुद्ध कर लेती है। लेकिन आकाश किसी की भी गति को अवरुद्ध नहीं करता है। उस वायु तत्व से जल तत्व पैदा हुआ और अग्नि तत्व पैदा हुआ, आप अग्नि तत्व देखेंगे थोड़ा सा और उन्नत हो गया, वो ज्यादा गुणवान हो गया, ज्यादा स्थूल हो गया। अब अग्नि तत्व आंख से भी दिखाई देता है और त्वचेंद्रिय से भी मालूम पड़ता है, ज्यादा गुणवान हो गया। इसलिए आकाश में एक शब्द, वायु में दो गुण है, एक शब्द और दूसरा स्पर्श। आप अग्नि में आएंगे तो अग्नि में तीन गुण हो गए, अग्नि में अपना जो है रूप है, वायु का स्पर्श है और आकाश का शब्द। जल अग्नि का कार्य और उसमें एक गुण बढ़ गया, अपना रस है, आकाश का शब्द है, वायु का स्पर्श है और अग्नि तत्व का रूप है। जल से पृथ्वी तत्व उत्पन्न हुआ। अब आप पृथ्वी में देखना, पांचों गुण हैं, शब्द भी हैं, स्पर्श भी हैं, रूप भी हैं, रस भी है और अपना गंध भी। पांचों गुण पृथ्वी तत्व में विराजते हैं, पांचों गुण पृथ्वी तत्व में विराजते हैं, इसलिए पृथ्वी अतीन्द्रिय नहीं है, ऐन्द्रिक है। पांचों इंद्रियों के द्वारा पृथ्वी को जाना जा सकता है। आंख से भी हम पृथ्वी को देख लेते हैं, हम उसको सुन लेते हैं, उसको सूंघ लेते हैं, हम उसको छू सकते हैं, उसको देख सकते हैं। पांचों ज्ञानेन्द्रियों की विषय पृथ्वी है, चार इंद्रियों की विषय जल है, तीन इंद्रियों का विषय अग्नि है, दो इंद्रियों का विषय वायु, एक इंद्रिय का विषय आकाश और आत्मतत्व अतीन्द्रिय। ये बड़ी मजेदार बात है और आश्चर्य की बात, जो ज्यादा गुणवान आप कहते हैं, ज्यादा गुणवान, ज्यादा स्थूल पृथ्वी तत्व, और सबसे ज्यादा विकार जो है ना पृथ्वी तत्व में ही है, सबसे ज्यादा विकार जो है ना पृथ्वी तत्व में। आप पृथ्वी तत्व को मिटा सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, जला सकते हैं, उसको भिंगा सकते हैं, जितने भी आप काम कर सकते हैं सारे काम पृथ्वी तत्व में। और सबसे ज्यादा दुर्दशा किसकी है, आप इस अर्थ में आप ले लेना, ये इतना ज्यादा स्थूलता, ऐन्द्रिकता और गुणवत्ता जो है वो परमात्मा से दूर होने के कारण है। अब आप ध्यान देना, आप पृथ्वी तत्व में आप स्थित हैं तो आपकी और परमात्मा की दूरी कितनी है, आप इसको साधना के अर्थ में लेना। आप पृथ्वी तत्व में विराज रहे हैं, ये जो स्थूल शरीर है ये पृथ्वी तत्व पार्थिव शरीर, आप इस शरीर को क्या बोलते हैं, पार्थिव शरीर। और जब आप परिचय देते हैं तो क्या परिचय देते हैं, इसी स्थूल शरीर का परिचय देते हैं। इसके अंदर सबसे ज्यादा, इसमें पांचों भूत हैं लेकिन इसके अंदर सबसे ज्यादा पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पांचों भूत हैं, इसलिए शरीर को बोलते हैं पांच भौतिक शरीर। आप थोड़ा 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 ऊपर चले, थोड़ा कारण की तरफ, आप पृथ्वी से किस में आए, जल में आए, जल से आप थोड़ा ऊपर आओ अग्नि तत्व में, अग्नि से थोड़ा ऊपर वायु तत्व में, और वायु से थोड़ा ऊपर आकाश तत्व में। आप जब आकाश तत्व में आए हैं तो आपकी और परमात्मा की दूरी कितनी है, सबसे महत्वपूर्ण साधना आपको यही करना है, हमें आकाश तत्व तक पहुंचना है। और आकाश तत्व में पहुंचने के बाद आपको परमात्मा तत्व में पहुंचने में विलंब नहीं है। जैसे आप वृंदावन से आ रहे हैं और जैसे आप कल्याण आ जाते हैं तो आपको क्या लगने लगता है, ओहो अब तो मुंबई आ गए भाई। जैसे आपका बोरीवली आ जाता है और आप बोर्ड देख लेते बोरीवली, और उसी समय आपके अंदर कुछ होने लगता है, आहा अब आ गए, अब आ गए, अब आ गए, आप बिल्कुल निकट आ गए, आप मुंबई के निकट आ गए, और आपको फिर अपने घर के निकट होने का एहसास जगने लगता है, अपने लोगों के निकट होने का एहसास जगने लगता है। इसलिए आप ध्यान दें, आत्म तत्व से लेके आप क्रम से गिनो तो ये पृथ्वी तत्व आपका छठे में पड़ता है, छठवें नंबर पर है। और हम रहते कहां पर हैं ज्यादातर, हम पृथ्वी में ज्यादा रहते हैं, और जैसे जैसे हम साधना करते हैं ना तो हम धीरे 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 अपने आप को ऊपर उठा लेते हैं। जैसे जैसे हम पंचकोशियों से अपने आप को ऊपर उठा लेते हैं तो हम कहां प्रवेश करते हैं, आकाश। आकाश का मतलब समझते हैं कि नहीं, मैंने आपको एक दिन कहा था मल विक्षेप, ये जो मल विक्षेप है ये स्थूलता है, ये वासना जलन घृणा ईर्षा द्वेष नासमझी ये सारी चीजें किसकी हैं? ये शरीर को लेकर के हैं, मन को लेकर के हैं, बुद्धि को लेकर के, बाहर के पदार्थों को लेकर के हैं। ये सारी चीजें वासना जन्य हैं। और जब हमारे मन से सारी वासना निकल जाती है तो हम बिल्कुल आत्म तत्व के निकट होने लगते हैं। और इसी को तो बोलते हैं खाली। आप साधना करते हैं तो क्या करते हैं? ये भरने की साधना है कि खाली होने की साधना है? हम सत्संग में आते हैं वो भरने के लिए कि खाली होने के लिए? कल हम लोगों ने सहस्रार्चन किया तो वो खाली होने के लिए कि भरने के लिए था? हम लोग अपने मन को खाली कर रहे थे। हम जप करने के लिए बैठे हैं तो उस समय आप क्या करते हैं? आप खाली होने के लिए करते हैं कि भरने के लिए? आप भगवान को भर रहे हैं, वो भगवान को भरते हैं तो वासनाएं खाली हो जाती हैं। हमारे अंदर जो पुराने संस्कार हैं, विकृतियां हैं, जलन है, घृणा है, मन की जो कमियां हैं वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। आप ध्यान कर रहे हैं, योगश चित्तवृत्ति निरोधः, तो आप चित्तवृत्तियों का निरोध कर रहे हैं। माने क्या कर रहे हैं? आप अपने विचारों से अपने मन को खाली कर रहे हैं, आप अपने भावनाओं से मन को खाली कर रहे हैं। और जिस समय आपका मन विचारों और भावनाओं से खाली हो जाए, उसी को तो बोलते योग चित्तवृत्ति निरोध है। चित्तवृत्ति का निरोध का अर्थ क्या है? अब आपके चित्त में कोई भी विचार नहीं है, भावना नहीं है, चित्तवृत्तियों का उदय अब समाप्त हो गया है, निर्वृत्तिक अवस्था प्राप्त हो गई, खाली। और आश्चर्य की बात, आप खाली हो जाए, बस आपका मन बिल्कुल खाली हो जाए, आकाश। इसलिए हमें अपने मन को क्या करना है? आकाश बना लेना। और जैसे मन हमारा आकाश बन जाता है ना, तो उस समय फिर हमारा मन बिल्कुल परमात्मा के निकट हो जाता है, क्योंकि परमात्मा के निकट आकाश तत्व है। तो हमें आकाश तत्व में स्थित होना है। और जब आकाश तत्व में स्थित होंगे तो आकाश तत्व का न जन्म है और न मृत्यु है। अब यहां पर आकाश का जो उदाहरण दिया है ना, वो घर आप इसको समझ ले, जैसे घड़ा है। तो आप कहां पर हैं? आकाश में हैं। उस घड़े के अंदर आकाश है ना। घड़ा फूट जाए तो घड़ा फूट जाए तो उसके अंदर का आकाश फूटता है क्या? नहीं फूटता है। आकाश तो आकाश है, आकाश को फूटने का कोई उपाय नहीं। अभी घर है, ये सत्संग भवन, इसकी दीवारें गिर जाए तो क्या इसके अंदर का जो आकाश है वो गिरेगा क्या? इसलिए आत्म तत्व जो है वो आकाश तत्व की तरह, आकाश की तरह, आकाश की तरह आत्म तत्व है। और वो न पैदा होता है और न मिटता है, इसलिए हमें वहां पहुंचना है। माने उसको समझना है कि मैं आत्मा हूं, मैं सच्चिदानंद हूं, ये शरीर है और ये शरीर मेरे से अलग है। पांच भौतिक शरीर, पांच ज्ञानेन्द्रियां, पांच कर्मेन्द्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये स्थूल शरीर, इन सब का मैं दृष्टा हूं, मैं बिल्कुल अलग हूं। और उस समय फिर आपको ये नहीं लगेगा कि मैं पैदा होने वाला हूं, मैं मरने वाला हूं। इसलिए यहां पर कहते हैं न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर के मिटने मारे जाने पर भी आत्म तत्व न पैदा होता है, न मरता है और न वो किसी के द्वारा मारा जाता है। और ये विपश्चित माने ऐसा अनुभव करते हैं साधक लोग, ये भी ध्यान देना चाहिए। अपने जितने भी महापुरुष हैं इस आत्म तत्व की अनुभूति करते हैं। ये कोई शब्दात्मक चीजें नहीं है, ये जो कही गई बातें हैं ऐसा ही अनुभव साधक लोग, ज्ञानी लोग करते हैं विपश्चित। एक बड़ा सुंदर आपको दृष्टांत सुना देते हैं, दृष्टांत से बात और मजबूत हो जाती है। आपने सुना होगा एक बड़े बहुत बड़े दार्शनिक हुए एथेंस सुकरात यूनान के, उन्होंने एक बड़ी मजेदार बात बोली, बहुत मजेदार बात, और एक ही बात ने उसको बहुत प्रसिद्ध बना दिया। उन्होंने कहा कि मैं ज्ञानी हो गया हूं, घोषणा कर दी कि मैं ज्ञानी हो गया हूं। यदि आप अज्ञानी हैं तो कोई समस्या नहीं है, समाज के लिए भी कोई समस्या नहीं, अज्ञानी से क्या समस्या है? लेकिन कोई व्यक्ति अपने आप को ज्ञानी समझने लगता है तो आसपास के आदमी को वो बात खटकने लगती है, क्योंकि हम ज्ञानी नहीं हुए और वो आदमी ज्ञानी कैसे बना? फिर आदमी सोचने लगता है कि ये ज्ञानी कैसे, लोग आक्षेप करने लगे, भैया तुम ज्ञानी कैसे, तुमने क्या भगवान को देखा है? बोले नहीं। बोले आत्मा को देखा? बोले नहीं। फिर भी बोले मैं ज्ञानी। और उन्होंने कहा कि जितने भी लोग हैं, इशारा कर दिया चर्च के लोगों की तरफ, पादरी पुजारी, अरे बोले सब अज्ञानी। बोले मैं ज्ञानी हूं। उन्होंने कहा कि मैं ज्ञानी इसलिए नहीं हूं कि आत्मा को जानता हूं या परमात्मा को मैंने देखा है। उन्होंने कहा कि मैं ज्ञानी इसलिए हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं अज्ञानी हूं। बोले अज्ञान का ज्ञान मेरे को हो गया है। बड़ी गहरी बात बोली उन्होंने। उन्होंने कहा कि आदमी को सब कुछ होता है लेकिन अज्ञानी होने का ज्ञान नहीं होता। पहले मालूम तो हो कि मेरे को कुछ नहीं आता है। आदमी को कुछ नहीं आता है फिर भी आदमी ये नहीं समझता है कि मेरे को कुछ नहीं आता है। यह आदमी की जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। अच्छा, आप सत्संग में आए हो, आप अज्ञानी बन के आए हो कि ज्ञानी बन के आए हो? झूठ मत बोलना। आप समझदार बन करके आए हो कि ना समझ बन के आए हो? ना, सच सच नहीं नहीं, झूठ बात है। आप समझदार बन के और अपनी समझदारी बढ़ाने के लिए आए हो। आपके अंदर ये भावना नहीं है कि हम ना समझें। आप अपने आप को ना समझते ही आपका अहम गिरना शुरू हो जाता है, आपका अहंकार मिटना शुरू हो जाता है, क्योंकि ना समझ होके ना समझ समझ कर अपने आप को अहंकारी होने का कोई उपाय नहीं। इसलिए हमारा जो होना, हमारा जो आचरण है वो समझदार आदमी की तरह है कि ना समझ आदमी की तरह है? हमारी जो अक्कड़ है वो समझदार आदमी की तरह कि ना समझ आदमी की तरह? हम समझदार हैं और अपनी समझदारी थोड़ा बढ़ाने के लिए आते हैं। जो सत्संग में हम आते हैं, हम ना समझ बन के हम अपनी नासमझी को मिटाने के लिए नहीं आते। हम समझदार बनकर थोड़ी और समझदारी बढ़ाने के लिए आते हैं। हम अपने ज्ञान का कोष और थोड़ा बढ़ाने के लिए आते हैं। सुकरात ने यही तो बात बोली। सुकरात ने कहा कि मैं समझदार नहीं हूं, मैं ना समझूं, और मैं मेरे को मालूम पड़ा कि मैं ना समझूं, मैं अज्ञानी हूं, ये मेरे को मालूम पड़ा। और आध्यात्मिक होने की प्रथम शर्त यही है, मालूम पड़ जाए, अज्ञान का ज्ञान हो जाए। तभी तो अर्जुन ने बोला शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, बोध हुआ कि मैं कुछ नहीं जानता हूं, मैं अज्ञानी हूं। और इसीलिए ज्ञान की खोज है। अज्ञानी वास्तविक ज्ञान की खोज करता है और ज्ञानी आदमी अपने ज्ञान को और बढ़ाता रहता है। ये दोनों चीजें बहुत अलग हैं, बहुत अलग हैं। एक बार मालूम पड़ जाए कि मेरे पास परमात्मा नहीं है, अच्छा मीरा में और हमारे में अंतर क्या है? आपको मालूम है आपके पास भी परमात्मा नहीं है? आत्मिक रूप से बात नहीं बोल रहा हूं मैं, वो आत्मा तो आप है ही। मीरा को भी विरह है प्रभु का और हमें भी विरह है प्रभु का, दोनों में अंतर क्या है? जमीन आसमान का अंतर है। मीरा के अंदर जो विरह है वो वेदना है और हमारे अंदर जो विरह है ना वो वेदना नहीं, संवेदना है। हम जानते हैं कि हमारा और भगवान का विरह है, हमारे पास हमें अभी प्रभु नहीं मिले हैं, हम जानते हैं, लेकिन वो जानना हमारे जीवन की वेदना नहीं है। वेदना माने दुख नहीं है, लेकिन मीरा की जीवन की वेदना है, वो दुख है, पीड़ा है। मीरा कहती कि मेरे को प्रभु चाहिए, उसके बिना मैं जी नहीं सकती। और वहां शब्द का प्रयोग भी किया, घायल की गति घायल जाने और न जाने को। मीरा कितनी दुखी है प्रभु को पाने के लिए, प्रभु को नहीं होने से, उनके नहीं मिलने से। अरे घायल कोई जानवर हो, तीर लगा हो और वो मरणासन्न हो, उस समय कितनी वेदना, कितना कष्ट होगा, कितना दुख होगा। और उस दुख को जानने वाला केवल वही जीव होगा, दूसरा नहीं जान सकता। वो भी एक वेदना है। और हमें भी भगवान नहीं मिले हैं, मालूम भी है, लेकिन कभी हम भगवान को मिलने के लिए कभी एक आधी रात आंखों में आंसू लिए गुजारी हैं क्या? कभी रोए हैं क्या? कभी हम रोए कि प्रभु तुमने अभी तक कोई झांकी नहीं दिखाई। ये मीरा के जीवन में प्रभु का न होना और हमारे जीवन में प्रभु का न होना, इस दोनों में जमीन आसमान का अंतर, जमीन आसमान का अंतर। सुकरात ने कहा कि हमारे जीवन में अज्ञान है, लेकिन अज्ञान का ज्ञान नहीं है, अज्ञान का बोध नहीं, अज्ञान की समझ नहीं है। इसलिए अज्ञानी आदमी भी अपना अज्ञान स्वीकार नहीं करता है, अज्ञानी होते हुए भी वो ज्ञानी की तरह प्रस्तुत होता है, व्यवहार करता है, आचरण करता है। और अज्ञानी आदमी यदि समझदार होने की तरह आचरण करे तो एक प्रकार से अंधा आदमी आंख वाले की तरह आचरण करने लग जाए, वैसा ही तो होगा। आदमी अंधा है और आंख वाले की तरह चलने लगे तो आप बताओ मेरे को, आदमी अंधा है डॉक्टर और वो आदमी आंख वाले की तरह चल रहा है, रोड से आंख वाले की तरह चल रहा है, तो क्या होगा? वो किसी से टकरा जाएगा, वो दीवार से टकरा जाएगा, वो गाड़ी से टकरा जाएगा, वहां खतरा है, क्योंकि आंख नहीं है और आंख वाले की तरह चल रहा है। और मालूम हो जाएगी भैया मेरे को आंख नहीं है, तो चलेगा कैसे? चलेगा आंख वाले की तरह चलेगा कि बिना आंख वाले की तरह चलेगा? वो सावधानी से चलेगा, वो टटोल टटोल के चलेगा, बहुत सारे खतरे जो उसके सामने हैं उससे टलेगा, वो बचेगा। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बात कही सुकरात ने, कहा कि मैं जानता हूं कि मैं अज्ञानी हूं, तुम नहीं जानते हो, तुम अज्ञानी हो, और मैं जानता हूं मैं अज्ञानी हूं, और इसीलिए मैं दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी हूं। क्योंकि ज्ञानी होने का प्रथम जो कदम है, प्रथम जो सीढ़ी है, वो अज्ञान का ज्ञान होना है। उस समय के लोग वो बात समझ नहीं पाए, भारतीय होते तो समझ लेते, बहुत जल्दी समझ लेते। बहुत सी बातें कही उन्होंने, लोगों ने कहा कि इसको जहर दो, ये तो बहुत विपरीत बातें कर रहा है। अंत में उनको जहर दिया गया, जहर का प्याला जब उसको दिया गया और वो व्यक्ति प्रसन्नता पूर्वक उस जहर को पी रहा है, शिष्य लोग रोने लगे। शिष्यों को उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात की, उन्होंने कहा कि मैंने जिया, जी के देखा आत्मा क्या है, अब मैं मर के देखूंगा कि आत्मा क्या है। बोले मैंने जीवन में देखा है, लेकिन मरने के बाद भी वो होगा कि नहीं, मरने के बाद भी वो तत्व, वो आत्म तत्व रहेगा कि नहीं रहेगा? बोले मर के देखूंगा, मैं हूं, मैं रहूंगा कि नहीं? बोले मरने के बाद ही मालूम हो सकता है कि वो तत्व मरेगा कि नहीं मरेगा। बोले मर के देखूंगा। और सत्य ही बहुत ही मजेदार आदमी था, वो जहर पिया और वो खोज रहा था, उस समय खोज रहा था कि मैं मर रहा हूं कि नहीं। और उन्होंने घोषणा कर दी, उन्होंने कहा कि पैर मरे लेकिन मैं अभी मरा नहीं, बोले घुटने तक शरीर शरीर शिथिल हो गया, मर गए, पैर मर गए, अभी तक मैं मरा नहीं। बोले कान मर गए, आंखें मर गई, सब कुछ मरा, लेकिन मैं अभी अंतिम, उन्होंने कहा कि मैं, वो मरते समय अपने आप को जिंदा करके मर गया। आत्मा की अजरता अमरता को जान के मरा, शरीर मरा, उसको मालूम पड़ा कि आत्मा आजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीर। शरीर के मरने पर भी वो आत्म तत्व मरने वाली वस्तु नहीं है, वो शरीर के परे की चीज। महर्षि दंडायन झेलम नदी के किनारे रहा करते थे। विश्व विजेता सुकरात वहां पहुंचे, तक्षशिला, वहां के राजा को पराधीन किया उन्होंने, आम भी राजा थे। और इसी परंपरा का था यह, सिकंदर भी इसी परंपरा का, सुकरात की परंपरा का था। सुकरात का शिष्य शायद अरस्तु हुआ, अरस्तु का प्लेटो और प्लेटो का सुकरात, सिकंदर। जब वहां से जब आने लगे, प्लेटो ने कहा कि भैया तू जा कहां रहा है? बोले विश्व विजय करने के लिए जा रहा हूं। वो भी मजेदार थे, बोले उसके बाद क्या करोगे तो विश्व विजय करने के बाद क्या करोगे? उन्होंने कहा आपके पास आके भजन करूंगा। प्लेटो ने कहा कि जगह खाली है, विश्व विजय करने के बाद ही भजन ही करना है। तो बोले अभी भजन क्यों नहीं करता है? बोले अभी से शुरू कर। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं विश्व विजय करके भजन करूंगा। बोले हिंदुस्तान आएगा रास्ते में, और वहां जाने के बाद तीन चीजें कहते हैं, उन्होंने बताई थी तीन चीजें, सुना था उन्होंने, प्लेटो ने सुना था हिंदुस्तान के बारे में, बहुत सुना था, वो बहुत ज्ञानी पुरुष थे। उन्होंने कहा कि वहां जाने के बाद तीन चीजें कर, वो दयालु होते हैं, महापुरुष बहुत दयालु होते हैं। उनको मालूम था इसका इसी में कल्याण है, लड़ने में कल्याण नहीं है। वो सुदूर भारत तक पहुंचेगा तो बाहर भारत का ज्ञान इसको मिले, वहां का ध्यान मिले, सत्संग मिले, और इसका भी उद्धार हो और हमारे देश का भी उद्धार हो। उन्होंने कहते कि वहां एक ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता, उसको ले आओ, लेने आना, केवल पुस्तक नहीं लाना है, समझना है। वहां पुस्तक ले आने का ये नहीं कि पुस्तक खरीद करके ले जाना, माने गीता का ज्ञान यहां ले आना है, गीता का ज्ञान समझना है, और दूसरी चीज किसी संत की शरण जाना, और तीसरी चीज कहते गंगा जल है सब। कहां यूनान का व्यक्ति, और वो कितनी अगाध निष्ठा और श्रद्धा रही होगी उसे। यहां आया सबसे पहले उन्होंने यही बोला कि मैं किसी साधु को मिलना चाहता हूं, गुरु की याद आ गई सिकंदर को, मैं किसी गुरु को मिलना चाहता हूं, किसी श्रेष्ठ साधु को मिलना चाहता हूं, मेरे गुरु का आदेश है। आम भी ने कहा एक गुरु है, बोले चलो हम मिला देंगे। बोले मिलाने के पहले उन्होंने सोचा कि इतना बड़ा सिकंदर विश्व विजेता, चलो बुला लेते हैं राजमहल में। सिकंदर के सैनिकों के साथ कुछ सैनिक गए देश के, अरे वो तो महर्षि दंडायन बड़े सिद्ध पुरुष, और वो झेलम का किनारा, योगियों का किनारा नारायण, बड़े बड़े आश्रम, तपस्वी लोग निवास किया करते थे, वो आपका ये झेलम का किनारा को सामान्य था क्या? ये पंजाब जो पाकिस्तान में गया हुआ है, बहुत उच्च क्षेत्र था, हमारी जो श्रेष्ठतम जो आध्यात्मिक भूमि थी वही थी, वहीं से पूरा भारत संचलित होता था, बड़े बड़े तीर्थ थे उधर। महर्षि दंडायन छोटी सी कुटिया झेलम का किनारा, बाल ऊपर यूं ऐसे लेते हैं, बड़ा समय मस्ती का रहा होगा, ऐसे ही ठंडी का समय धूप सेक रहे थे। एक दो उनके शिष्यगण, आहा वो तो परम वैराग्यशाली साधु, ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष, वहां जाकर के उन्होंने आदेश दिया, आदेश दिया, बोले सिकंदर विश्व विजेता यहां तक आ चुके हैं और उन्हें इस राज्य पर आधिपत्य जमा लिया है, संधि हो गई है और राजमहल में आपके दर्शन करना चाहते, आपको बुला रहे हैं, आपको फरमा रहे हैं। बड़े आदर के साथ बोला, लेकिन वो तो मस्त फकीर, सिकंदर के सैनिकों को आदेश देना आता था, बड़े क्रूरतम थे वो लोगों को मार सकते थे, उठा के ले जा सकते थे, छीन सकते थे, वो विश्व विजयी कोई ऐसे नहीं होती है, बड़े ही क्रूरतम लोग थे। लेकिन उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, महर्षि दंडायन ने सुना और अनसुना कर दिया। और जब उन्होंने और आक्रोशित होकर के दोबारा बोला, बोले सुने नहीं मेरी बात, सुकरात का आदेश नहीं सुना। महर्षि दंडायन ने बड़ी मजेदार बात बोली, उन्होंने कहा कौन सुकरात, कौन सा आदेश? अरे बोले वो आदेश जिस आदेश को ये चिड़िया नहीं मानती है। बोले सुकरात का आदेश इन चिड़ियाओं को दे दो, बोलो कि तुमको सुकरात बुला रहा है, तो क्या ये चिड़िया तुम्हारे सुकरात की बात मानती हैं? आप ही झेलम नदी को आदेश दो, क्या ये झेलम नदी तुम्हारे सुकरात का आदेश मानती है? अरे इन जड़ पेड़ पौधों का आदेश दो, क्या ये पेड़ पौधे तुम्हारे सुकरात का आदेश मानती? बोले नहीं मानती। दो कौड़ी का आदेश जो चिड़िया नहीं मानती, और वो आदेश तुम हमको दे रहे हो, चकरा गए, उनके सैनिक चकरा गए, वो निर्भय और वो वचन नारायण और सत्य वचन, सैनिकों को आज तक ऐसा आदमी नहीं मिला, उनके सामने कांपने वाले, गिड़गिड़ाने वाले, भागने वाले लोग मिले और वो व्यक्ति कहता आदेश देना हो तो इन चिड़ियों को दे दो, झेलम नदी को दे दो, चकरा गया। ऐसा आदमी, ऐसा निर्भीक आदमी, कोई उत्तर नहीं था उसका, उनके पास बात सत्य थी। आज कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था सैनिकों को, बात तो सत्य है, आज पहली बार मालूम पड़ा सैनिकों को सिकंदर के कि हमारा सिकंदर भी निर्बल है। उनको ऐसा लगता था कि हमारे सिकंदर का आदेश नहीं मानने वाला कौन है दुनिया में, पर आज पहली बार मालूम पड़ा चिड़िया के ऊपर भी उसका आदेश नहीं चलता है। लौट गए और जाकर के उन्होंने क्षमा मांगी, हम कुछ नहीं कर सके, उनको नहीं ला पाए। बोले बहुत मजेदार आदमी है, उस पर किसी का वश नहीं है, किसी का भी वश नहीं है। कहते सिकंदर ने पहला वाक्य बोला, बोले हमारे मेरे गुरु भी ऐसे ही हैं। उसको मालूम पड़ा हो न हो, बात तो दम है, इस बात में बहुत दम, पहुंच गया, वहां जाके खड़ा हो गया, प्रणाम किया और उस समय भी एक बड़ी मजेदार बात बोली महर्षि दंडायन ने। वो संयोग से ऐसा हुआ कि धूप सेक रहे थे, बीच में आके खड़े हो गए सिकंदर और उनकी छाया पड़ने लगी उनके शरीर के ऊपर। उन्होंने कहा भैया तू दे नहीं सकता है तो छीन क्यों रहा है, तो दुनिया में कुछ दे नहीं सकता है, दुनिया को कुछ दे नहीं सकता है, तो मेरी फुकट की ये सूर्य की किरणें जो भगवान सूर्य मेरे को दे रहा है, मेरे शरीर पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं और उसको तुम छीन क्यों रहे हो? बोले थोड़ा हटके खड़े हो जाओ। सिकंदर को ऐसा बोलने वाला आदमी आज तक कोई नहीं मिला, पहली बार मिला, पहली बार डांटने वाला आदमी मिला, पहली बार मालूम पड़ा कि मैं गलत हूं, बात तो सही है, खड़े होने का तरीका नहीं, अरे मैं हवा से धूप से एक रहा हूं और बीच में आके तुम खड़े हो गए, तुम्हें खड़े होने का तरीका नहीं है, बात तो सत्य है। कहते झट से सिकंदर दूर खड़ा हो गया और उसके बाद जो बातें हुई उनकी बहुत अद्भुत बात है। सिकंदर ने पूछा कि मेरा डर आपको नहीं लग रहा है, सारी दुनिया कांपती है मेरे सैनिकों से, मेरे शस्त्र अस्त्रों से, इन योद्धाओं से, क्या आपको ऐसा नहीं लगा कि मेरे को मार सकते हैं? वो नारायण आत्मज्ञान की घोषणा थी, वो ब्रह्म ज्ञान की घोषणा थी। नहन्यते हन्य माने शरीरे, उन्होंने कहा कि शरीर के मारे जाने पर भी आत्मा मारा नहीं जाता है। मेरे को मालूम है आप मारोगे इस शरीर को, मारोगे पीटोगे इस शरीर को, पीटोगे खत्म करोगे इस शरीर को खत्म करोगे, लेकिन मेरे तक तुम्हारी पहुंच नहीं है, मेरे आत्मा तक तुम्हारी पहुंच नहीं है, मेरे आत्मा पर तुम्हारा वश नहीं है। तुम शरीर पर नियंत्रण कर सकते हो, तुम शरीर को गुलाम भी बना सकते हो, लेकिन मेरी आत्मा को गुलाम कौन बनाएगा? मैं आत्मा हूं, वहां तक तुम्हारी पहुंच ही नहीं है, तुम्हारे शास्त्रों की भी पहुंच नहीं है, और तुम कदाचित इस शरीर को मारोगी भी, मैं भी देखूंगा ये शरीर को तुम मार रहे हो, मैं देखूंगा इस शरीर को तुम खत्म कर रहे हो, उसे अलग होके मैं भी देखूंगा। इतना पार्थक्य बोध, नारायण इतना पार्थक्य बोध। पंचदशीकार ने कहा जैसे ये भौतिक पदार्थ वृक्ष आदि आप अपने से अलग समझते हो, वैसे ही अपना शरीर भी अपने से अलग मालूम पड़े। समझना कि वो ज्ञान, वो पूर्णता का ज्ञान, जैसे मालूम पड़ रहा है ये शरीर, ये सारी चीजें मेरे से अलग हैं, वैसे मालूम पड़े ये शरीर भी मेरे से अलग हैं। बात तो सत्य है। राजा जनक का दृष्टांत देता हूं मैं आपको इस चीज को समझने के लिए। राजा जनक ने एक स्वप्न देखा था, बहुत मजेदार स्वप्न था। राजा जनक शयन कर रहे हैं, राजा है, और जहां पर सो रहे हैं सोने का पलंग है। सोने का पलंग माने केवल सोने का पलंग नहीं, समझ गए? अरे सब लोग तो सोने के पलंग पर सोते हैं। आप यहां जितने भी लोग हैं सब सोने की पलंग पर सोते हैं। हा? आपके सारे पलंग सोने के लिए हैं, सोने के पलंग पर सोते हैं, लेकिन उनका पलंग सोने का था, और वो भी सोने का था, वो स्वर्ण का था, कोई कमी नहीं थी। और वो सो रहे हैं, और सोते समय उन्होंने स्वप्न देखा, बहुत मजेदार स्वप्न। अक्सर भिखारी होता है वो राजा बनने का स्वप्न देखता है, और जो राजा होता है वो भिखारी होने का स्वप्न देखता है, जो हारा हुआ है वो जीतने का स्वप्न देखता है, और जो जीता हुआ है वो हारने का स्वप्न देखता है, क्योंकि उसके मन में डर है कहीं मैं हारने जाऊं। और जो हरा हुआ है वो सोचता है कि मैं जीतूंगा कि नहीं, इसलिए वो जीतने का स्वप्न देख। राजा जनक थे और उन्हें स्वप्न देखा मैं भिखारी हो गया, और जब भिखारी हो गया तो भीख मांग रहे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, दीनहीन है, शरीर के ऊपर वस्त्र भी हैं फटे पुराने हैं, और वो भिक्षा मांग रहे, भीख मांग रहे, लेकिन कोई दे नहीं रहा है, लोग उपेक्षा कर रहे हैं। कितना बड़ा दुख, बहुत मुश्किल से उनको थोड़ा चावल मिला, कहीं से एक पुरानी हंडी मिली, मटका मिला, बहुत खुशी हुई, और वो सोचने लगे कि अब मैं चावल पका के खाऊंगा। आनंद, कितना आनंद है, लकड़ी जला रहे हैं, फूंक मार रहे हैं, आग जला रहे हैं, पानी डाला, वो मटकी रखा, ओहो क्या खुशी, पकेगा खाऊंगा, पकेगा खाऊंगा। और उसी समय दो लड़ते हुए सांड आ गए, और उस दो लड़ते हुए सांडों के बीच में उनकी वो मटकी आ गई, और मटकी फूट गई, चावल बिखर गया। राजा जनक बैठ करके रोने लगे, और वो फूट फूट के रोते रोते थोड़ी सी झपकी लग गई। जैसे हम लोगों की सत्संग में झपकी लग जाती है, कभी कभी सुनते सुनते भी झपकी लग जाती है। अरे सुनते सुनते नहीं, कई बार तो बोलते बोलते भी झपकी लग जाती है। अब आपको मालूम नहीं पड़ता है, कभी कभी हम भी सो लेते हैं बोलते बोलते। अब आपको मालूम नहीं पड़ता है, सही मालूम नहीं पड़ता है, क्योंकि बोलते रहते हैं, लेकिन एक वाक्य और दूसरे वाक्य के बीच में जो स्पेस है ना, उतने में भी आदमी सो लेता है, सो लेता है। एक बार की मैं बहुत पुरानी बात सुना दूं। एक बार मैं ट्राइबल एरिया में थोड़ा भ्रमण में था, वो 40 दिन की जो पदयात्रा मैंने की थी ट्राइबल जोन में, तो इतना मैं थक गया और वो इतने लोग श्रद्धालु रात में 2 बजे अंतिम, मेरे को खुशी हुई कि अब तो अंतिम मीटिंग खत्म हो गई, अब मिलना जुलना खत्म, जाके अब आराम करें। उस समय कोई 50 लोग रोड पर ऐसे गांव के लोग आदिवासी अपना चादर ओढ़ के बैठे हुए हैं। जैसे ही हम पहुंचे और सामने आ गए, महाराज हमारे गांव चलो। अरे मैंने कहा भैया जब 2 बजे, महाराज बोले नहीं 500-600 लोग गांव में बैठे हैं मंदिर में, आप आओ 2 मिनट के लिए आओ, बस 2 मिनट के लिए। तो मैंने कहा जब 2 मिनट चलो कोई बात नहीं, चले गए वहां। और मधु बाबू मैं जा करके देखा सचमुच लोग बैठे हैं ऐसे, मैंने प्रणाम किया उनकी आस्था को, बैठ गया, माइक सामने रखा। अब 2 मिनट का मतलब 2 मिनट थोड़ी होता है, बोले 2 मिनट और प्रवचन करो, आशीर्वाद दो। और मैंने माइक लिया और शुरू किया। अब उसमें शुरुआत करता हूं तो ओम बोलता हूं, ऐसे ओम बोला और मैं सो गया। अब उस पीछे सब श्रोता लोग बोल रहे थे ओम, और फिर ओम बोल के मैं चुप हो गया। अब चुप हो गया तो सो गया। आप सब लोग सोच रहे थे कि महाराज समाधि में चले गए। फिर मैं ओह जग गया, अरे मैंने कहा सो गया। फिर मैंने ओम शुरू किया, ओम कितना भी कोशिश करो वो नींद आए। अंत में मैंने सोचा कि अब ओम से काम नहीं चलने वाला है, ओम बोलूंगा फिर सो जाऊंगा मैं। और आप केवल ऐसी अवस्था में नहीं, ऐसे भी प्रवचन करते समय थोड़ा सा सो लेता हूं मैं। और ये जो प्रवचन के समय नींद आना, ये कोई नई बीमारी नहीं, ये बहुत पुरानी बीमारी है। वो अमरनाथ, अमर गुफा, और उसमें भी भगवान शंकर मां पार्वती को ज्ञान दे रहे थे, और उस समय भी मैया सो गई थी। मालूम है आप लोगों को, मालूम है ना, मां सो गई थी। इसलिए सत्संग में नींद आना ये बहुत पुरानी बात है, और आपको नींद आए तो आप बुरा मत समझना। और आपको नींद आए तो आप एक झपकी ले लेना, लेकिन बाद में सावधान हो जाना। फिर अब राजा जनक उनकी मटकी गिरी, चावल बिखर गया, और वो खूब रोते रहे स्वप्न में, स्वप्न में। और रोते रोते झपकी लगी, और जैसे इधर झपकी लगी और उनकी नींद टूट गई। जैसे नींद टूटी अब सोचने लगी, स्वप्न तो हम भी देखते हैं और राजा जनक ने भी देखा था, लेकिन दोनों में कितना अंतर। राजा जनक सोचने लगे, मैंने स्वप्न देखा भिखारी बनने का, भीख मांगा, लोग भीख नहीं दे रहे थे, कितना दुख था, कितनी परेशानी थी। अब वो सत्य के सत्य, मैं राजा बना हूं या आज मैं राजा हूं, ये सत्य है कि मैं भिखारी था वो सत्य। मजेदार बात क्या थी मालूम है, उसमें एक बात थी मजेदार। राजा जनक सोच रहे थे जैसे कि राजा जनक भिखारी बनने का स्वप्न देख सकता है, तो भिखारी राजा जनक देखने का स्वप्न भी तो देख सकता है। वो सोच रहे थे कहीं ऐसा तो नहीं, वो जो सो रहा था भिखारी और उस भिखारी का स्वप्न तो नहीं है ये। राजा जनक सोच रहे थे ये कहीं भिखारी का स्वप्न तो नहीं है, मैं राजा जनक हूं, ये उस भिखारी का स्वप्न तो नहीं है जो स्वप्न के अंदर जो सो रहा था, उधर वो सोया और इधर मैं जगा, कहीं ये स्वप्न तो नहीं है। बात सत्य है, जब एक राजा भिखारी बनने का स्वप्न देख सकता है, तो एक भिखारी राजा बनने का स्वप्न देख सकता है, वो सत्य की सत्य। बोले राजा जनक हूं ये भिखारी का स्वप्न तो नहीं है, उनकी जागृति संदिग्ध हो गई, ऐसा स्वप्न देखा उन्होंने और उनकी जागृति संदिग्ध हो गई। ये बहुत ऊंची बात हो गई। और आपको एक बार मालूम पड़ जाए कि ये शरीर और ये जगना ये सारी चीजें स्वप्न है, آپ مشکل میں ہوں گے. آپ کے اندر وہ جو ستیتو کا آکرشن ہے وہ واسنا کو پیدا کرتا ہے, اور ایک بار معلوم پڑ جائے کہ یہ سوپن ہے پھر یہ ستیتو کا آکرشن سماپت ہو جاتا ہے. سوپن کے پرتی آکرشن نہیں ہوتا ہے, کیونکہ سوپن کو ہم ستیہ کہاں سمجھتے ہیں. اور ایک بار معلوم پڑ جائے یہ سوپن ہے, یہی تو ہے, یہی تو ہے, اتنا ہی جاننا اور کچھ نہیں ہے. اور یہ ساری چیزیں سوپن ہیں, تو جنم بھی سوپن, مرنا بھی سوپن, جینا بھی سوپن, یہ ساری چیزیں یہ سوپن ہیں. اور اس سوپن کا جو مول آدھار تتو ہے, اس کے بعد نہنے تے ہنے مانے شریر, سوپن میں کوئی مرتا بھی ہے تو مرتا نہیں, اور وہ پیدا بھی ہوتا ہے تو پیدا نہیں. آپ سوپن میں کچھ بھی آپ کے جیون میں پریورتن آئے, یا دکھد یا سکھد, کچھ ہوتا ہے کیا؟ کچھ ہوتا نہیں, ہوتا ہوا معلوم پڑتا ہے, وہ کیول ہوتا ہوا معلوم پڑتا ہے. اس لیے تتو درشٹی سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہوئی معلوم پڑ رہی ہیں. یہ باتیں بہت گہری ہیں. اس لیے تتو درشٹی سے جب آپ جاگیں گے اور معلوم پڑے گا کہ ساری چیزیں سوپن ہیں, اس سمے آپ کو معلوم پڑے گا اجو نتیہ شاشوتو یم پرانو نہنیتے ہنے مانے شریرے. آپ سو رہے تھے, سوپن دیکھ رہے تھے, کوئی مار رہا ہے, پیٹ رہا ہے, آپ مر بھی گئے, آپ کی ارتھی بھی نکلی, یہ سوپن میں دیکھ رہے تھے, جلانے کے لیے لوگ لے بھی جا رہے ہیں, اور اس سمے آپ اپنے ارتھی کو دیکھ کے آپ رو رہے تھے, بغل والے نے جگہ دیا, ارے بولے روٹو کیا کر رہے, رو رہے ہو, اٹھ کے بیٹھ گئے. اس سمے کیا ہو رہا تھا؟ آپ مر بھی گئے تھے, ارتھی بھی نکل رہی تھی, اور اس سمے آپ کو کوئی پوچھے کہ بھیا تم تو مر گئے تھے, ارتھی بھی نکل رہی تھی, تو آپ کیا بولو گے؟ ارے یہ تو سوپن تھا, وہ تو سوپن تھا, سوپن. ایسے ہی نارائن یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں, میں پیدا ہوا ہوں, میں مرنے والا ہوں, میں اموک ہوں. اور ایک بار سمجھنے کے بعد, ایک بار جاننے کے بعد, بودھ ہونے کے بعد, پھر آپ کو کوئی بولے گا کہ آپ مرنے والے ہیں, آپ بولیں گے نہیں بھیا, ہم تو اجر امر ہیں, نہ ہنیتے ہنے مانے شریرے. بہت سندر شلوک ہے, اس شلوک کو ہم یہیں پورا کرتے ہیں, کل ہم لوگ سنیں گے ہنتا چین منیتے ہنتم. بہت سندر سندر اس کٹھوپنیشد کے منتر ہیں, آپ سیدھے بیٹھ جائیں. ॐ ह्रीं नमः शिवाय, 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 ॐ ह्रीं नमः शिवाय। 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 ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।